नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर न कर्मा न कर्ता न गंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम् न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम् न वक्त्रम् न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु चुर्न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्षम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विथस्त कर्मादि जालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादि गात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा ఆనందరూపం నమో వీతరాగం నాద్యం నమత్యం నాంతం నచాన్యత్ ద్రవ్యం న క్షేత్రం న కాలో న భావ న శిష్యో గురునాపీనం న దీనం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం ఇదం జ్ఞాన రూపం స్వయం తత్వవేదీ న పూర్ణం న శూన్యం న చైత్యం స్వరూపం చాన్యో న భిన్నం న పరమార్థమేకం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం ఆత్మా రామ గుణాకరం గుణనిధిం గుణాకరం చైతన్యరతనాకరం సర్వే భూతగతాగతే సుఖదుఃఖే జ్ఞాతి త్వయి సర్వగే త్రైలోక్యాధిపతే స్వయం స్వమనసా ధ్యాయంతి యోగీశ్వరా వందే తం హరివంశకర్షహృదయం శ్రీమాన్ హృదావ్యుచ్యతాం
వీతరాగ భగవాన్ కీ అపన్ ఏకీభావ స్తోత్ర పఢ్ రహే హైన్ जिसमें कितने श्लोक हो गए 16 13वें से रिपीट करेंगे हैं शुद्धे ज्ञानी सुचिनि चरिते सत्य యపి త్వయ్య నీచా భక్తిర్నోచే ధనవతి సుఖా వంచికా కుంచికేయం సఖ్యోద్ఘాటం భవతి కథం ముక్తి కామస్య పుంసో ముక్తి ద్వారం పరిదృణ మహా మోహముద్రా కవాటం ప్రచ్ఛన్న హల్ వయమగమయై రంధకారైః సమంతా
पन्थामुक्ते स्थपुटितपदः क्लेशगर्तैरगादैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासी यत्यग्रेग्रे न भवति भवत् भारती रत्नदीपा आत्मज्योतिर् निधिरनवधिर् द्रष्टुरानन्द हेतु कर्मक्षोणी पटल पिहितो यो न वाप्यः परेषाम् हस्ते कुर्वन् जनति तिरतस् सम्भवत् भक्तिभाजः स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृतिपरुषो दामधात्रीखनित्रै प्रत्युत्पन्ना नये हिमगिरे आयता चाम्रताभ्ये या देवत्वत् पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा चेतस्तस्यां मम रुचिवसा दाप्लुतं क्षालितान्हा कल्माषं यत् भवति किमियं देवसन्देहभूमि। यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रादुर्भूत स्थिरपद सुख स्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहम् सैति मती हृत्पद्यते निर्विकल्पा मिथ्यैवेयम् तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेशरूपाम् दोषात्मानो व्यविमतफलात् त्वत्प्रसादाद्भवन्ति मिथ्यावादम् मलमपनुदन् सप्तभङ्गितरङ्गै वागम्बोधिर् भुवनमखिलम् देवपर्येति अस्ते तस्यावृत्तिम् सपति विबुधास् चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृता सेवया तृप्नुवन्ति। वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, प्रादुर्भूत अर्थात उत्पन्न हुआ है,
या प्राप्त हुआ है। स्थिर पद सुख, जिनको कौन सा पद स्थिर है, एकमात्र ही है मोक्ष पद, जो एक बार प्राप्त होता है तो फिर हमेशा बना रहता है। तो ऐसा मोक्ष पद रूपी या मोक्ष सुख जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे आप त्वाम अनुध्यायतो मे, जब मैं अनंत सुख या कि मोक्ष के सुख पाने वाले आपका स्मरण करता हूं या आपका ध्यान करता हूं, तब त्वयि एव अहम सा एव, जैसे आप हो सो वैसा ही मैं हूं, ऐसा मति उत्पद्यते निर्विकल्पा, बिना किसी संदेह के मेरे मन में ऐसी बुद्धि जागृत होती है, जैसे ही मोक्ष सुख पाने वाले आपका मैं ध्यान करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कि जो आप हैं सो ही मैं हूं। ठीक भी है, भगवान का इस दर्शन इसी दृष्टि से किया जाता है कि आपके जैसा मुझे भी होना है, तो ऐसी बुद्धि मेरे भीतर उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मिथ्यैवेयम, लेकिन झूठी बात है, मैं आपके जैसा हूं नहीं, बनना चाहता हूं, बन सकता हूं, लेकिन अभी तो नहीं हूं, पर आपके दर्शन करने पर मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये बात बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन तदपि ऐसा होने पर भी तनुते विस्तारम करोति, किस चीज का तृप्तिम मेरे अंदर, अभ्रेश रूपाम तृप्तिम अर्थात अविनश्वर तृप्ति को देने वाली है। यह विचार भी मेरे मन को बड़ा संतोष देता है, जैसे कि बहुत प्यासे व्यक्ति को और कोई उसका अपना परिचित व्यक्ति और कहे कि क्यों इतने व्यथित हो रहे हो, 10-25 कदम आगे चलो, बढ़िया तालाब है, पानी का खूब पियो, क्यों व्यथित हो रहे। अभी उसने पानी नहीं पिया, लेकिन कैसा लगता, जैसे कि उसे पानी मिल गया हो, तृप्ति हो गई। ठीक इसी तरह से जब जब हे भगवान अनंत सुख मोक्ष रूपी स्थिर सुख को प्राप्त करने वाले आपका मैं ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं, तो मेरे भीतर ऐसा भाव जागृत होता कि जैसे आप हैं ऐसा ही मैं हूं। हालांकि ये बात सच्ची नहीं है, लेकिन मन को बड़ी तृप्ति देती है। सो ठीक ही है, दोषात्मानो अपि अभिमत फलास तत्प्रसादात भवन्ति, कितना भी पतित से पतित क्यों ना हो, दोषी आत्मा भी क्यों ना हो, यही तो आपकी विशेषता है कि आपके चरणों में आकर के आपकी कृपा से वो जैसा फल चाहे वैसा फल पा लेता है। मैं चाहूं आपके चरणों में आपके जैसा बनना तो मुझे कोई देर नहीं लगने वाली, कोई चाहे कि आपके चरणों में आकर के मेरे रोग शोक दूर हो जाए तो उसमें भी देर नहीं लगने वाली। अपनी बात भी धीरे से जरूरी है, वो तो अभी तो पहले यही कहेंगे कि आपके चरणों में आकर के आपके जैसा बनना चाहूं तो भी मेरा ऐसा विचार मुझे तृप्ति देता है। और ठीक भी तो है, आपकी तो महिमा ही ये है कि आपके चरणों में आकर के जो व्यक्ति आपके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करे तो उसको अपना मन माना फल मिल जाता है, आपके जैसा तक बन सकता है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति ये मांगे कि मेरे रोग शोक दूर हो जाए तो क्या दूर नहीं होंगे। अभिमत फलास तत् प्रसादात भवंती, आपके प्रसाद से आपकी कृपा से उसकी सारी चीजें उसको जैसी चाहिए हैं वैसी मिल जाएंगी। मैं तो आपके स्मरण से आपके जैसा बनना चाहता हूं। सेठ जी अगर ऐसा चाह रहे हैं कि मेरा शरीर सोने का हो तो आप उनकी मनोकामना पूरी कर देना, करोगी, उसमें क्या बात। मुझे ऐसी कोई कामना नहीं है कि मेरी देह कल सोने की हो जाए, मैं तो आपकी भक्ति से आपके जैसा बनूंगा, सस्ते में थोड़ी मानने वाला मैं, छोटे मोटे में क्या आपने कहा ले लो सोने जैसा शरीर, इतने में नहीं मानने वाला, आपके जैसा ज्ञान शरीर ही बनूंगा मैं तो मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपसे दूसरी कामना भी करे तो उसकी तो पूर्ति होगी ही, आपके जैसे बनने की कामना करे तो उस तक की पूर्ति हो जाती है। एक तरह से कितनी बड़ी चीज मांगने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान के सामने, बड़े व्यक्ति के सामने छोटी सी चीज क्या मांगना, मांगो तो फिर पूरी अच्छे से एक बार कि आप ही के जैसा बन जाऊं तो ये झगड़े ही खत्म हो जाएगा कि कौन सा रोग और कौन सा शरीर और दुनिया भर के। चक्रवर्ती की आरती उतारी थी एक गरीब आदमी ने, कैसी उतारी थी मालूम? अब बड़े व्यक्ति की आरती उतारने और अपने पास तो छोटो ही तो दीपक है, तो उधार ले आया था वो एक परात, बहुत बड़ी परात, उसमें रखा था उसने दीप, फिर आरती उतारी थी। मतलब आपकी आरती हम भले हमारे पास दीपक है लेकिन उतारेंगे तो बढ़िया, क्योंकि चक्रवर्ती की आरती उतारने वाला खाली नहीं जा सकता, जितनी बड़ी प्लेट में उतारी होगी पूरी भर के लौटेगा, तो बड़ी वाली ले जाओ ना तो पूरी भर करके लौटे। तो बड़ी कामना करेंगे, कौन सी बड़ी कामना है कि आपके जैसा ही मैं भी बन जाऊं। इतनी बड़ी कामना करने से कोई छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही सहज साध हैं, सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगी, जिसको अपन कहते हैं अरे ये तो बाएं हाथ का काम है। मुख स्तुति का उद्देश्य बता रहे हैं कि स्तुति का उद्देश्य तो यही है कि मैं आपके जैसा बन जाऊं, और जब जब भी आपका ध्यान करता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं भी आपके जैसा हूं। हालांकि अभी मैं आपके जैसा नहीं हूं, लेकिन क्या करूं मैं आपके जैसा बन सकता हूं, ये विचार भी मेरे मन को बड़ा संतोष और बड़ी तृप्ति देता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके चरणों में आपकी कृपा से जो व्यक्ति जो चाहेगा उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मिथ्यावादम मलम अपनुदन सप्तभंगी तरंगय वागम बोधि। आपका वचन रूपी अम्बोधि मतलब समुद्र, आपका वचन रूपी समुद्र कैसा है? मिथ्यावादम मलम अपनुदन, मिथ्या जितने भी मत मतांतर हैं उन सब के दोषों का निराकरण करने वाला है, खंडन मंडन करने वाला नहीं लिखा। हाँ, ये भाषा अपने जैन दर्शन की नहीं है। क्या कह रहे हैं बड़े उससे मलम अपनुदन, उसमें जो जो दोष हैं उन सबको हटा करके साफ सुथरा बना देने वाला। मिथ्या जितने मत मतांतर हैं उन मिथ्या मत मतांतरों का निराकरण करने वाला, और काहे के द्वारा निराकरण होगा? समुद्र में अगर कचरा फेंक दिया जाए तो कैसे हटता है वो? लहरों के द्वारा। कौन सी वाली लहरें? सप्तभंगी तरंगई। सप्तभंगी कहते साद्वाद को, हाँ, जो सात रूपों में कथन करने की शैली है उसको सप्तभंगी कहते हैं, सापेक्ष कथन करने की पद्धति को साद्वाद कहते हैं। और उसके कितने रूप हैं? सात रूप हैं। कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित है भी और नहीं भी, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित।
क्या ऐसा कोई स्थान है जहाँ ये एक ही भाग अलग से पाया जाता हो, जहाँ ये एक ही भाग? भैया आपका प्रश्न जो है वो कंफ्यूज कर रहा है, या तो आप कंफ्यूज हैं स्वयं। ये चारों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ एक ही साथ ये सब घट जाएं। ये एक साथ नहीं घट सकते हैं, क्योंकि जिस पृथ्वी में कंफर्म नहीं है कि जीव है या नहीं वो कहलाती सामान्य पृथ्वी, और जिसमें कंफर्म है कि जीव है उसके बढ़ने इत्यादि को देखकर कंफर्म हो गया कि जीव है तो वो पृथ्वी काय कहलाएगा। पृथ्वी काय में अपना जन्म लेने आ रहा है उसको तो अपन जान नहीं सकते कि कहाँ आ रहा है, कहाँ जन्म लेगा, और इसमें से निकल गया है अकेला पृथ्वी का शरीर बचा है, ये भी अवधि ज्ञान का विषय तो हो सकता, अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। भैया और कौन सा क्वेश्चन? मेरा प्रश्न है कि मुनि महाराज को क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि पढ़ करके करेंगे क्या? सवाल ये है, बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाने पर किसी विशेष परिस्थिति में पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन रोज चाय पी जाएगी तब जबकि पेपर पढ़ेंगे, ऐसी बुरी आदत डालना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह भी बीकथा है कि रोज अब बिना पेपर के काम नहीं चल रहा। अब वो चाहिए और पलटेंगे और उसमें लिखी हुई एक भी खबर भली लिखी हुए तो बड़ी मुश्किल में मिलेगी, बड़ी मुश्किल में। वो चतुर्मास वाले कालम में दो चार बातें धर्म की मिलेंगी, बाकी पूरे पेपर में इनने उनको जो कर दो, उनने उनको वो कर दो, इनने फलाने केस जीत लो, उनने फलाने को मार दो, जेए में जीत गए, दुनिया भर की बात। इसमें कुछ है सार? कुछ भी सार नहीं निकलता है। तो इसलिए अगर आवश्यकता नहीं है, कभी विशेष परिस्थिति में उसमें से कोई अच्छी चीज आई है, उतनी तो कई लोग निकाल के कटिंग और पढ़वा देते हैं, कभी कभार उसमें से भी पढ़वा देते हैं। हम सुबह से शौच के बाद आते हैं, भैया वृत्ति चलती 10 मिनट, उतने में हमारे सामने पेपर फैला के रख देते हैं, खुद पलटते जाते, हम देखते जाते कि हाँ भाई महाराज जी पढ़ने लायक है, ठीक है हमारा दोनों काम चल रहे हैं। अभी अभी 8-10 दिन से ऐसा शुरू हो गया है, बाकी अपनी रुचि पेपर में न पहले रही न इतनी फुर्सत ही नहीं है। अगर हमारा शेड्यूल बना दिया जाए तो उसमें हमें इसके लिए समय ही नहीं मिलेगा कि कहां से हम वो कई कटिंग अभी पड़ी हुई हैं इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर की, मैं उठा करके उनको पढ़ भी नहीं पाता हूं, हफ्ते हफ्ते भर में भी नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि उतना थोड़ा समय चाहिए। वैसा हमने एक बार कहा था लोगों से कि जो 24 के 25 करवा दो तो एक घंटा अच्छो निकल गया है अपने पास, लेकिन भी 24 कोई नहीं तैयार हो रहा, वो कह रहे नहीं 24 सही होंगे, 25 तो हो ही नहीं सकते, इन कामों के लिए बहुत कठिन है। आप बरसात होने के बावजूद भी मंदिर में पधारे, जबकि महाराज जी बरसात के पानी में जीव होते हैं, आप लोगों को चलना निषेध है क्या? नहीं है, ठीक है, प्रश्न तो अच्छा है, प्रश्न तो अच्छा है। अभी 3-4 दिन पहले ही डिस्कशन हुआ, अच्छा हैवी डिस्कशन हुआ इस पर, क्यों वर्षा के पानी जब तक बारिश हो रही है, बारिश आकाश में से वो अंतर मुहूर्त तक पानी प्रासुक है, जब पृथ्वी के कांटेक्ट में आएगा तब जाकर वो अशुद्ध होगा। और इतना ही नहीं, पृथ्वी पर निरंतर कोई ना कोई आवागमन चल रहा है, इसलिए मार्ग प्रासुक है, तो उस प्रासुक मार्ग पर हम चले, और हमारे ऊपर जो पानी गिर रहा वो तो अचित है, निर्जीव है, इसलिए चलने में कोई निषेध नहीं है, कोई जीव राशि का विघात नहीं होता है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा उस चीज से। नहीं ठीक है, आप अपना महाराज मानते हैं तो आप हमारा कान पकड़ सकते हैं, उसमें क्या नहीं, इसमें क्या, अगर ऐसा रिश्ता बना रहे तो फिर देखिएगा कैसे चलता मोक्ष मार्ग। हम आपसे डर रहे, आप हमसे डर रहे, आप हमसे नहीं कह पा रहे कहना चाह रहे, और हम आपसे नहीं कह पा रहे, ऐसा कैसा हम आपसे कह सकें? अगर प्रेम होता है तो हम आपसे भी कह सकेंगे देखो ये नहीं करना अपने को, ऐसे ही आप भी कह सकते कि क्या ये करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए, नहीं ठीक, इसमें क्या, ये तो श्रावक और साधु के बीच का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता बने तब तो बहुत मुश्किल होती है, बड़ा घबराहट लगती है कि अरे कैसे पूछेंगे। क्लियर कर लिया तो मन में कम से कम विकल्प तो नहीं रहा, और संकोच में पड़े रहते कि अरे महाराज जी रहे हैं सही है यार, पानी में चले आए फलाना, अब पता ही नहीं है इसलिए, और पता हो जावे तो ठीक, और हमारी भी भूल चूक हो सकती, तो आपके प्रश्न से हमारी भी भूल चूक दूर हो जाती है कि हाँ भाई ये तो ठीक है, उस तरह अच्छा है, प्रश्न करने से पता लग जाता। मुनि महाराज के पूर्व की अवस्था कहां से प्राप्त होती है, पूर्व अवस्था कहें कहां से, ऐसे ही होना चाहिए जैसे प्रारंभ में, अच्छा जैसे प्रारंभ में ब्रह्मचारी होते, फिर उसके बाद कैसे कैसे कहां किस पद से प्राप्त। देखो ऐसा है, अब महापुरुष तो रहे नहीं, महापुरुष तो छोटे मोटे व्रत अंगीकार करते नहीं, अणुव्रत इत्यादि नहीं ग्रहण करते, वे तो सीधे महाव्रत लेते हैं, गृहस्थ से सीधे महाव्रती बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान पंचम काल में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब देवेंद्र कीर्ति महाराज से दीक्षा मांगी कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे दो, तो उन्होंने कहा क्रम क्रम से आगे बढ़ो, पंचम काल में ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहा, पहले क्षुल्लक बनो, पहले ब्रह्मचारी, ठीक है ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी नहीं भी तो क्षुल्लक बन जाओ, फिर एलक बनना, फिर बाद में मुनि महाराज बनना। आचार्य महाराज को उनके गुरुजी ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी रखा 1.5 साल तक, और उसके बाद सीधा मुनि दीक्षा के योग समझ करके, क्योंकि वे जानते थे कि ये स्थिर रहेंगे, अडिग रहेंगे और इनके द्वारा बहुत धर्म प्रभावना होनी, इसलिए उनको डायरेक्ट 22 वर्ष की छोटी उम्र में और दीक्षा दे दी। तो ये आचार्य भगवंतों पर निर्भर है कि वे सारी स्टेज क्रम क्रम से पार कराएंगे या कि सीधा मुनि बनाएंगे, ये हमारी अपनी क्षमता, योग्यता और आचार्य भगवंतों की कृपा पर निर्भर है। इसलिए आपका प्रश्न ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम एक 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 स्टेज पार ही करें, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और अगर करें तो ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, एलक और मुनि महाराज, इस तरह से हैं। हाँ, उपदेश तो ऊपर कहीं दिया जाएगा, जब हमने क्षुल्लक दीक्षा ली तो हमसे निवेदन तो यही करवाया था कि निवेदन करो मुनि बनने का, तो निवेदन करेंगे मुनि बनने का, बनाएंगे कम ही देंगे। हाँ, निवेदन बड़ा ही करना चाहिए। जैन पत्र पत्रिकाओं के पुराने संस्करण शास्त्र फट गए हैं, ये तो कई बार आ चुका प्रश्न, आपको जैसा करना हो वैसा करें, जिससे अभिनय ना हो। बस निधत्त निकाचित कर्म क्या होते हैं, ये कोई अलग से कर्म नहीं होते, ये जो 8 कर्म हैं और उनकी 148 प्रकृतियां हैं, उनमें से हमारे परिणामों के द्वारा कुछ कर्मों में ऐसी स्थिति अनुभाग पड़ जाता है कि जिसका उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण संभव नहीं है, उसको कहते निकाचित, जिनका फल अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ेगा, और जिनका उत्कर्षण अपकर्षण तो नहीं कर सकते, संक्रमण कर सकते हैं, वो कहलाते निधत्ती कर्म। ऐसे 2 प्रकार की अपने भीतर इन कर्मों में स्थिति अनुभाग पड़ जाता है, इसको कहते निधत्ती निकाचित कर्म। ये कोई अलग से कर्म नहीं होते, ये इन्हीं 8 कर्मों में इस तरह की स्थिति अनुभाग अपने परिणामों से अपन बांध लेते हैं कि फिर उनको भोगना अनिवार्य। लेकिन मजा ये है कि ये निधत्ती निकाचित कर्म भी जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाते, साक्षात जिनेन्द्र भगवान के नहीं, समोचरण में जाके जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करो ऐसा नहीं, जिन बिंब दंशने निधत्ती निकाचित कम पैडी खय जादो, वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज धवला जी में लिख रहे हैं कि निधत्ती निकाचित कर्म भी जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाए, जिनको की काटना मुश्किल था अपने पुरुषार्थ से, उनको सिर्फ जिनेन्द्र। इसीलिए पहले के पुराने लोग बच्चों से कहते कि जाओ पहले मंदिर जाओ, फिर खाना पीना चाय मिलेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली, पहले जाओ। पता नहीं कब कौन से कर्म तुमने खोटे बांध लिए और अचानक बिना किसी उसके बिंब के दर्शन करने मात्र से तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी चीज है ये, तो निधत्ती निकाचित कर्म अगर बंध भी गए हों तो उनको जीव अपने जिन बिंब के दर्शन से, श्रद्धा के द्वारा, परिणामों की निर्बलता से काट सकता भैया, इसी को कहते निधत्ती निकाचित। आगे लिखा है इसे कैसे बांध लेता है, इसे अपने परिणामों की तीव्रता से बांध लेता, इतना ही लिखा है। और दीपायन मुनि महाराज भी इसे क्यों नहीं काट पाए, जबकि वे तो भावलिंगी मुनि थे। भैया कोई जरूरी नहीं है कि ये कर्म सहज रूप से, हमने कहा कि बहुत कठिन है इन कर्मों को काटना, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण से ही कटेंगे ये कर्म। अपने शरीर की सुरक्षा हेतु यदि कोई उपाय करता है, उससे जीव हिंसा होती तो क्या पाप का भागी बनेगा? शरीर की व्याधि होती, कोई उपचार किया जाता उसमें हिंसा होती तो क्या पाप के भागी बनेंगे? जैसे पेट में कीड़े हो गए, अपन ने दवाई ली तो उनका मरण होगा, हाँ ठीक है, इसलिए उसके लिए प्रायश्चित लिया जाता है। लेकिन व्याधि दूर करने के लिए उपचार तो करेंगे, उपचार कैसा करना? निर्वध, सदोष नहीं, निर्दोष औषधि लेना। पहले कौन सी औषधि की गवेषणा करेंगे जिसमें हिंसा ना हो, ऐसी औषधि पहले खोजेंगे जिस पैथी में ऐसी मिल जाएगी। लेबल नहीं लगा कि इस पैथी में बिल्कुल सही है, आयुर्वेद में सब सही है ऐसा भी नहीं है, होम्योपैथ में सब सही है ऐसा भी नहीं, और एलोपैथ में सब खराब ही है ऐसा भी नहीं। तीनों पैथियों में जो जीवों से नहीं बनी होगी, जिसमें जीवों का घात करके नहीं बनाई होगी, वो औषधि निर्बद्ध है, उस औषधि का सेवन करेंगे एक चीज। और सेवन करने से उस रोग को दूर करने के लिए जो कीटाणु इत्यादि का नाश होगा उसके लिए फिर औषधि के बाद प्रायश्चित लिया जाता। अगर त्यागी व्रती व्यक्ति लेता है तो वो प्रायश्चित अवश्य लेगा, जितनी बार औषधि लेंगे उतना प्रायश्चित होता है। इसके लिए ठीक लिखा है, क्योंकि दोस्तों लगता है जीवों की हिंसा तो होती है, क्यों नहीं लगेगा। हाँ, अपने पेट में कीटाणु हो गए और अब अपना शरीर उसको साफ सफाई करेंगे तो प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा। आचार्य श्री तो देते हैं, उनको साफ किया आपने, दवाई लगाई, घाव भरेगा। अब जब घाव भर जाए तो फिर निवेदन करना पड़ेगा आचार्य महाराज से कि महाराज इस घाव के लिए उपचार किया हमने, आप इसका कोई प्रायश्चित दे रहे, तो प्रायश्चित दे देते हैं ताकि मन निर्मल हो जाता है, उसमें दोष तो लगता है। आप देश देशांतर में घूमते रहते हैं, जयपुर में आप रहे हैं, श्रावक श्राविका आपको कैसे लगे जयपुर के, कंपेयर करवाना चाह रहा लड़ाई मतलब। अब देखना मजे की बात क्या हुआ, एक चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा था, तो एक तरफ से एक व्यक्ति ने आकर के पूछा कि मैं आगे वाले गांव में जाना चाह रहा हूं, आप तो उस गांव से परिचित होंगे, मुझे बताएं वहां के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा सुनो, तुम जिस गांव से आए हो वहां के लोग कैसे हैं। उसने कहा बड़े बाहियात लोग हैं, बड़े खराब लोग हैं, बिल्कुल भी व्यवहारिकता नहीं है उनके अंदर, ना कुछ पूछा ना कुछ। कहते तो सुनो, सावधान रहो, आगे के लोग भी ऐसा ही है। उतने में ये एक और आया उसी रास्ते से, उसने पूछा कि क्यों भाई, तुम तो जानते हो कि आगे के लोग कैसे हैं। उसने कहा पहले ये बताओ जिस गांव से आए वहां के, अरे केले इतने प्यारे लोग, इतने बढ़िया लोग हैं, क्या कहना उनका। तो कहते तो चले जाओ, आगे के लोग भी इतने ही अच्छे हैं, आप समझ गए होंगे। आप भले जग भला, और आप अगर खोटे तो सब संसार आपके लिए खोटा ही है, इसमें क्या। यही जवाब ठीक है भैया, मृत्यु के वक्त किसी से मोह हो तो उसका जीव अटका रह सकता है कुछ समय के लिए, मोह की वजह से प्राण निकलने में कष्ट तो होता है। शरीर से मोह होवे या किसी व्यक्ति को देखने का सुखानुबंध निदानानी जीवित मरणा संसा मित्रानुराग, अगर मित्र से अनुराग होवे तब भी आखिरी समय में वेदना होती है और प्राण थोड़े मुश्किल से निकलते, उसी को कह लो आप कि देर से निकले प्राण, मुश्किल से निकलते, कठिनाई से निकलते, आ जाता देख लेता मैं। इसलिए उसको आप अटकना कहो तो कह सकते, अटकना कह सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से जितनी आसक्ति होगी उसको प्राण छोड़ने में उतनी मुश्किल होगी, तो ऐसा भी कह सकते हैं। पर इस भाव से मुक्त रहना चाहिए हमेशा, सहज रूप से मरण उपस्थित होने पर सबका मोह छोड़ देना चाहिए। आप जहां भी रहते हैं, अब ये इसमें जो है प्रशंसा लिख रहे हैं, पढ़ो भैया, आपका सहन करो, वहां का माहौल अच्छा हो जाता है, पर जब आप वहां से चले जाते हैं तो सूना सूना हो जाता होगा, आपके यहां से जाने से पर्यूषण पर में अत्यधिक सूनापन हो जाएगा। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप दो में से एक ही महाराज सही होते रह जाओ, एक मतलब आधे आधे कर लो, एक जने होते रहे आप, एक जने होते रहे आप, ऐसा कह रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से मतलब आप कंसीडर करो हमारी बात, तो ताकि यहां पर भी अच्छा बना रहे, सूनापन नहीं लगेगा। महाराज हम जौहरी बाजार वाले आपको विश्वास दिलाते हैं कि महाराज हम आपके लिए कोई कष्ट नहीं होने देंगे, आपकी भावना तो अच्छी है, लेकिन भावना के साथ साथ और जिस तरह अपन ने विचार किया है उस विचार में अपन को उसी के अनुरूप लाभ भी लेना चाहिए। एक जगह जहां से जाएंगे वहां पर अप्रसन्नता होगी, जहां पहुंचेंगे वहां पर प्रसन्नता होगी। अगर हम ऐसा सोच लेवे कि बस ये नहीं को प्रसन्नता करवानी है तो आप कितने भी नहीं आ पाते, हम कहूं और रह आते हो तही रह आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरे से तीसरे में, एक जगह रहे आवे तो पानी रुका रहे तो गंदा हो जावे हैं, और बहता रहे तो निर्मल रहता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो सहज ही है, मुनि जनों के लिए तो इस तरह हमेशा ही करना पड़ता। चार महीना रोकोगे, साल भर रोकोगे, उसके बाद तो जाएंगे, जाना तो पड़ेगी कछु, नहीं तो फिर घर बना लो, इतना ही रहो, फिर उसमें क्या अंतर रहा सामान्य गृहस्थ में और श्रावक में। इसलिए जिसको लाभ लेना है तो वो तो पीछे पीछे आ जावे। और हमने आपसे क्या कहा था कि तुलसीदास ने लिखा कि बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मूल, जो हृदय से जाओ तुम तो सबल जान हो। हे भगवान, मुझे निर्मल जानकर, कमजोर जान करके आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं, सो चले जाओ, शरीर से चले जाओ, लेकिन मेरे मन से जाके बताओ तो हम आपको जान है कि बहुत बलवान, आप नहीं जा सके। तो ये बात तो जो है अपने मन में होनी चाहिए तो उसका लाभ मिलेगा। अब ये प्रश्न तो बहुत हैं और समय बहुत कम है, अब क्या किया जाए। ये इतने सारे बढ़िया बढ़िया अच्छे से लिखे हैं इन्होंने, बहुत मेहनत करके लिखे होंगे। मैं यही सोचता हूँ कि एक एक प्रश्न सोचने में, फिर इतना लिखने में, और एक एक बेटा था ग्वालियर में, रोज का काम था उसका, मैं हार के बाद आऊं उसके पहले वो मुझे बैठा मिलता था, उसके 10 क्वेश्चन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी ऐसा लिखता था वो, पहले नंबर ऊपर क्वेश्चन पेपर, फिर टाइम 1.5 आवर नहीं 45 मिनट ऐसा करके सब, और 10 क्वेश्चन रोज। उसके माता पिता ने बताया कि महाराज छुट्टियां इसकी ऐसे ही निकल गईं, आपके पास से आता है, वहां से सन्मत संदेश कहीं और दूसरी पत्र पत्रिकाएं ला करके रखेगा, न टेलीविजन देखना न किसी से बोलना, उनको पलटता रहता, प्रश्न निकालता है, 10 प्रश्न लिखेगा रोज। और फिर इतना ही नहीं, जो आपने उत्तर दिए सो देख लो इसके पास लिखे हुए, उसने हम 100 दिन रहे तो उसने 1000 प्रश्न पूछे और 1000 के उत्तर घर आकर के लिखे, उसके पास अच्छी खासी उत्तर पुस्तिका बन गई। तो मेहनत का काम तो है, टाइम तो लगता है, उसके लिए मन बनाना पड़ता है, लेकिन अब इतना ही हम आपके जवाब दे पाएंगे, बाकी तो आज ये सब छूट जाएंगे। जिनेंद्र भगवान परम पूजनीय है, तो क्या अन्य देवी देवताओं से उपचार या अन्य विशेष विषयों के बारे में पूछना नहीं चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको क्या करना। अपन तो बीतरागी भगवान कोई सब कुछ मानते, वो नहीं से सब कछु पूछ ले, अब और कोई की का जरूरत, इनसे जब काम ने बने, जब दूसरे को देखें अपन, अरे भाई हाँ, अब जब अपना काम अटक जाएगा तो देखेंगे, बाकी अबे तक तो अपने काम इन्हीं से बन जाते हैं पूरे। पंडित कैलाश चंद जी थे, उनको बुखार आ जाता था तो रुकते नहीं थे, वो कमरे में चलो बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते थे, सो बच्चों के साथ में मंदिर में कहते बिठा दो हमें, 105 बुखार है, खंबा से टिक करके बैठ गए। बच्चों ने एक बार सोचा कि देखें तो का कहती है भगवान से, कैसी पूजा भक्ति करत, सो खंबा के पीछे छुप करके सुना, सो भगवान से क्या कह रहे थे कि अब जी हो गया बुखार, ने हमसे अभूत सामायिक, उन्हें हम कर सकता आपकी स्तुति, अगर अपनी सामायिक और स्तुति करवाने हो तो ठीक करो, नहीं तो हम नहीं कर सकते। बस भगवान के सामने बैठे और शुरू कर दिया सहस नाम, और सहस नाम पूरा होता था और बुखार कैसे 105 से 100 हो जाता था,
कोई नहीं जानता, चुपचाप उठ के वापस चली आती। भैया परिणामों में निर्मलता आती तो असाता कर्म अपने आप दूर हो जाता है और मन चंगा तो सब चंगा। इसलिए जो है एक सदैव और सब साधे सब जाए। सो जगह जगह माथा पटक भी से अच्छो है कि ये कई जगह आखिरी बार पटक तो देव क्या उठे हैं इन्हें जब तक ठीक न हो जाए मामला। ऐसी अगर श्रद्धा हो जावे तो सारा काम बन जाता। जगह जगह कहाँ कहाँ पटकते रहोगे कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, इनसे भी कछु बन जाए उनसे बन जाए। को से मिनत बनत अपने ही आप है, बनता अपने परिणामों से है। लगता है कि इनसे उनसे बन जाएगा। वीतराग भगवान में श्रद्धा रखो, सारा काम आसान होता। देर से भले ही हो अंधे नहीं है, इतना ध्यान रखना चाहिए। हाँ इसलिए हाँ शांतिनाथ भगवान ये तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने लिखा है कि कोई से बात करी उन्होंने तो ऐसा लिखा होगा।
मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। सरल सत्य व्यवहार करूं
रहे भावना ऐसी सरल सत्य व्यवहार करूं।
बने जहां तक इस जीवन में औरों का